ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध का अध्याय है 29। इसमें अध्याय का नाम है भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या, और टेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे 40। यद् भयात् वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति यद्भयात्, यद्भयात् वर्षते देवो भगणो याति यद्भयात्। बाद में पढ़ता हूं। भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान का वचन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते, प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनिश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में सूर्य चमकता है, बादल पानी बरसाता है, सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती हैं। यह जो अध्याय है, भगवान कपिल देव अपनी माँ को उपदेश देते हैं। देवहूति जी ने माँ ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछा है, और उन्हीं प्रश्नों का ये उत्तर कपिल जीव दे रहे हैं। तो इसके काफी पहले एक प्रश्न था, भक्ति योग के विषय में विशिष्ट प्रश्न देहूति जी का था। इसके बाद देहूति जी ने यह प्रश्न पूछा है कि जो विचित्रता है सारी सृष्टि में, विविध प्रकार की विचित्रता है, इसका वर्णन कीजिए। और उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा है कि काल के विषय में बताइए, काल मतलब टाइम फैक्टर। तो यहां पर भगवान कपिल देव, जो पहले प्रश्न किया गया था प्रकृति की वैचित्र को, विचित्रता को वर्णन कीजिए, उसका वर्णन न करके पहले काल का वर्णन किया है। क्योंकि काल के स्वरूप, काल का जो स्वरूप है, वास्तविक स्थिति है, और इसका क्या प्रभाव है, इसको जाने बिना हम प्रकृति के जीवों की वैचित्रता को समझने में कठिनाई होगी। यहां पर इस श्लोकों में आप लोग इसे पढ़ते दिन पढ़ ही रहे हैं, 35वां श्लोक तक भक्ति योगस्य योगस्य मया मानवी उदीरितः। भगवान कपिल देव कहते हैं कि माँ देवहूति, मैंने भक्ति योग की, योग की सारी विशेषताएं बता दी, और 36 जो इसमें टेक्स्ट है, या हम लोग 40 पढ़ रहे हैं। तो भगवान का एक विशिष्ट रूप है काल, काल भी भगवान का एक विशिष्ट स्वरूप विशेष है, समय, टाइम फैक्टर। एतद् भगवतो रूपम्, ब्रह्मण परमात्मन, भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का काल भी एक रूप है। भगवान भगवद गीता में कालोस्मि लोकक्षय कृत, भगवान कहे ना कि मैं काल हूं और अभी प्रवृत्त हो गया हूं, लग गया हूं लोक को क्षय करने में। तो काल के स्वरूप, तो यहां पर काल के विषय में कई यहां से 36 से प्रारंभ करके और अध्याय के अंत तक काल का स्वरूप, काल है क्या और इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें श्रीमद् भागवतम इस भाग में स्पष्ट कहा गया है कि जो संसार में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह काल के प्रभाव से होता है, इसका प्रभाव है। स्वरूप क्या है कि वह भगवान का ही एक विशिष्ट स्वरूप रूप है, अथवा यह कहे भगवान ही काल रूप में है। यह संसार के जो परिवर्तन होता है, किसी व्यक्ति का जन्म होता, बच्चा रहता है, 10 वर्षों के बाद देखेंगे तो उसके आकृति में, उसके स्वभाव में, उसके बाणी में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन कौन कर देता है? काल कर देता है, काल का है स्वभाव। तो यह इसका प्रभाव है काल का, सब जो कुछ है इसको चेंज कर देता है, तो इसको जानना आवश्यक है। तो भगवान कपिल देव जब वर्णन कर रहे थे उस काल का, तो काल जो भगवान का ही स्वरूप है, तो काल का प्रभाव क्या है इस श्लोक में वर्णन किया गया। इससे पहले हम थोड़ा आपको याद दिला देते हैं, आप लोग जो रेगुलर श्रोता हैं, इसी तरह का एक सिमिलर श्लोक 25वें अध्याय में भगवान ने कहा है। तो उसमें भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातोयम, यहां पर यत भयात कहते हैं तो वहां मद भयात, भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे भय से हवा चलती है, वायु जो प्रवाहित होता है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो वहां कहते हैं मद भयात, मेरे भय से, डायरेक्ट भगवान मेरे भय से, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस तप्ति मद भयात, या दूसरा पहले सिमिलर श्लोक है लेकिन दूसरे जगह की मैं बात करता हूं, 42वां श्लोक है 25वें अध्याय का, मद भयात वाति वातोयम, हवा प्रवाहित होती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे भय से, मेरे निर्देशन से, मेरी इच्छा से सूर्यस तप्ति मद भयात, भगवान सूर्य जो प्रकाश दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तो भगवान का भय है, भगवान का नियंत्रण है, भगवान की आज्ञा का पालन है। वर्षति इंद्र, बारिश क्यों होती है, क्यों इंद्र देवता जो बारिश के अधिष्ठात्री देवता हैं, क्यों बारिश करते हैं, उनको भय है कि यदि मैं नहीं बारिश करूंगा तो भगवान हमको दंडित करेंगे। और अग्नि किसी चीज को जला देती है, फ्लेम उसमें होता है, तो वह अग्नि भगवान के भय से। और मृत्यु शरती मद भयात, मृत्यु देवता जो किसी प्राणी को नष्ट कर देते हैं, शरीर को एक शरीर से दूसरे में बदल देते हैं, तो वह मेरे भय से आता है। तो ठीक है, एकदम मौत के बदले यद, थोड़ा सा अंतर है, यद भयात वाति वातोयम, काल का स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि यद, यहां कहे कि मेरे भय से, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यत कहेंगे जिस, और कोष्ठ में लिखे हैं परमेश्वर, और अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ठीक उसी को, भगवान के ही भय से वायु बहती है, हवा जो चलती है अपने से नहीं चलती है, भगवान का नियंत्रण, भगवान चाहते हैं तो चलती है। यत भयात वाति वातोयम, यह हवा, ऐसे तो हमें तो लग रहा है कि इसे आप फैन चालू कर दिया इसलिए इधर हवा आ रही है, भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरे भय से वायु कहते, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस तपति मद भयात, भगवान सूर्य एक सेकेंड के लिए भी विलंब नहीं कर सकते, उनको पूर्व क्षितिज पर आना है, समय से आएंगे ही, किसी भी कारण से एक मिनट के लिए, एक घंटे के लिए रुक नहीं सकते, आकाश में थोड़ा मैं दूसरा काम कर लूं, चाहे किसी पर जिम्मा दूसरा प्रकाश दे, मैं अपना कुछ व्यक्तिगत काम करूं। सूर्यस तपति मद भयात, भगवान का नियंत्रण है, भगवान की आज्ञा है, भगवान के पालन के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन के लिए, यद भयात वर्षति देव, देवता यहां पर इंद्र जी से मतलब है, ये जल के अधिष्ठात्री देवता दो लोग हैं। जब तक जल नीचे रहता है, पृथ्वी पर रहता है, जलाशय में रहता है, तो उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण है, वरुण ना, वरुण देव है। नदी में जो जल है, जमुना जी में नीचे बह रहा है, चाहे समुद्र में जल है, तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में आता रहता है? वरुण देव के। और जब ही पानी आकाश में रहता है बादल के रूप में, सूर्य की किरणों के कारण वाष्पीकरण होता है, आकाश में जल चला जाता है बादल के रूप में, तब उसके इंचार्ज हो जाते हैं इंद्र। अब गुजरात में क्यों नहीं बारिश हो रही है, तो इंद्र से पूछिए क्यों नहीं वहां कर रहे हैं। कहीं जगह ने आप लोग सुने हैं दुष्काल पड़ा हुआ, साउथ इंडिया में बहुत कम बारिश अभी हो रही है, जितना होनी चाहिए बहुत जगह। तो यद भयात वर्ष दे देव, इंद्र वर्षा करते हैं, बारिश भेजते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। और भगण, भगण का होता था नक्षत्र हैं, तारे हैं, रात्रि के समय आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो प्रकाश देते हैं। वो क्यों भगवान कहते हैं कि मेरे भय से मेरा उन पर अंकुश है, मेरा नियंत्रण है, मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऐसा करते हैं। तो जगत की सारी जो प्रक्रिया है वह भगवान के अधीन है, भगवान के निर्देशन में आती है। श्रीमद् भागवतम में इस बात को बार बार कहा गया है। आप लोग जानते होंगे नारद जी एक बात कहे हैं, जब भी वो बच्चे थे पूर्व जन्म में, नारद जी तभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसके पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, एक परिचारिका के पुत्र थे, सेविका के पुत्र थे। तो अपने विषय में नारद जी बताते हैं कि मैं, नारद जी अपना जीवन बताए हैं कि मैं बच्चा था, 5-6 वर्ष का लड़का था मैं, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मेरे घर में केवल दो थे, मैं था, नारद जी कहते हैं, उस समय नाम नहीं वर्णन किया गया है, लिखा गया उस समय क्या नाम था, छोटे बच्चे थे। तो चूंकि अपनी माँ के इकलौता पुत्र थे, माँ विधवा थी, पिताजी नहीं थे, तो वह उसके मन में बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, नारद जी के माता के मन में, सा अस्वतंत्रता न कल्पा सिद्ध योग क्षेम में, उसके मन में खूब अम्बिशन था, महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने बच्चे को खूब बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दूं, खूब बढ़िया से बढ़िया उसको वस्त्र दूं, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं, स्वस्थ रखूं। लेकिन वह क्या कर सकती थी, केवल इच्छा कर सकती थी। घर में तो खुद भोजन करने के लिए दूसरे घर में मजदूरी करके लाती थी, तो शाम को भोजन बनता था, तो वह क्या कर सकती थी। लेकिन उसी महत्वाकांक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को देना है, बढ़िया से बढ़िया उसको खाना खिलाना, बढ़िया से कपड़ा पहनाना, सब कुछ व्यवस्था करना, लेकिन बेचा सा अस्वतंत्रता। नारद जी कहते हैं कल्पासिद्ध योगक्षेम, मेरे योग और क्षेम की खूब चिंता करती थी, मैं अपने लड़कों को इतना बड़ा बनाना है, महान बनाना है, ऐसे करना है, लेकिन कर नहीं पाती थी। तो उसी समय नारद जी कहते हैं इससे ही बसे लोको योषा दारु मई यथा। नारद जी ने वर्णन किया है यह सारा संसार भगवान के हाथ में है। कैसे? आप लोग जानते हैं दारुमयी योषा, कठपुतली का नृत्य आप लोग देखा है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? पपेट शो सचमुच देखे हैं कि हमारे कहने से कह रहे हैं? लेटेस्ट आपने कब देखा था, कितना वर्ष पहले कितना? तो नारद जी कहते सबसे ही बसे लोको, सारा संसार भगवान के अधीन है, ठीक वैसे ही जैसे दारुमयी योषा काठ की स्त्री किसके अधीन रहती है, सूत्रधार के, अंदर से जैसा करता है। कभी कभी आप देखें स्त्री आपस में झगड़ा करती है, वो होता है क्या कहते हैं, पपेट कहते कठपुट, झगड़ा करते हैं ऐसे, अथवा कभी युद्ध होता है तो कोई घोड़े पर चढ़ जाता है, वैसे करता है और देखता है सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि काठ की पुतली में कुछ गुण आ गया, वो अपने से एकदम 100% वह कंट्रोल है सूत्रधार के, वह जैसा चाहेगा कि हाथ उठना है तो उठता है, और चाहे अगर हाथ नीचे हो तो नीचे जल रहता है। एकदम 100% हम लोग डिपेंडेंट हैं भगवान की इच्छा पर, भगवान की शक्ति पर। कोई भी नारद जी कहते हैं ईश्वर ही बसे लोगों, ईश्वर के अधीन वैसे ही लोक है जैसे काठ की स्त्री कठपुतली सूत्रधार के जो दिखाता है, वह पर्दे के पीछे रहता है, इधर उधर करता रहता है, मैनिपुलेट करता होता है। तो यह संसार कंप्लीटली पूर्णतः भगवान के अधीन है। हम स्वतंत्र इच्छा भी, यहां तक हमारे में जो इच्छा होती है, कौन सी किस तरह विचार उत्पन्न होते हैं, उस पर पूर्णतः भगवान का नियंत्रण है। इसी बात को भागवतम में एक बार वो कहे वृत्रासुर, वृत्रासुर का नाम आपने सुना होगा, इंद्र के साथ युद्ध हुआ था, वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया था। तो युद्ध के दौरान वो वृत्रासुर ने इंद्र से कुछ कहा है, यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन ईश तंत्राणि विद्धि हो। वो भी कहते हैं कि जैसे काठ की स्त्री कठपुतली, अथवा कभी कभी हम लोग कुछ घास से अथवा लकड़ी से कुछ मृग बना लेते हैं, पशु बना लेते हैं, तो वह पूर्णतः अधीन होता है दूसरे पर, वैसे ही हे इंद्र यह सारा संसार और संसार के सारे प्राणी ईश माने कृष्ण के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। यहां तक कि चैतन्य चरितामृत में बात बताई गई कि बड़े बड़े जो लोग देवता है, समझा जाता है कि उनकी स्वतंत्रता कुछ न कुछ जरूर होगी। बड़े बड़े देवताओं की बात है, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सनकादि हैं, नारद, बड़े बड़े मूर्धन्य व्यक्ति हैं, और कम से कम देवता लोग देखा जाता है कुछ क्रिया करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब अभृत जारे जैसे नाचाए छे तैसे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर, ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। जब भगवान के लिए हम लोग यह बात कहते हैं, भगवान कहते हैं गॉड के लिए, तो उसका अर्थ होता है कि सड ऐश्वर्य संपन्न, सभी जो ऐश्वर्य भगवान है उसे युक्त है। और जब भी उसी तत्व को ईश्वर कहा जाता है तो ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण पार्ट। भगवान भगवान तो है, सौंदर्य है, ज्ञानी है, लेकिन हो सकता है कि छोड़ दे नियंत्रण भी उनका। एकल ईश्वर कृष्ण एकमात्र विश्व के, सृष्टि के, प्राकृत तथा अप्राकृत जगत के कंट्रोलर हैं कृष्ण। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब दूसरे क्या है, भृत है, सेवक है। तो सेवक हैं तो थोड़ी स्वतंत्रता उन्होंने दिया होगा ना, जारे जैसे नचाए, कृष्ण जिसको जैसे नचाना चाहते हैं, जो कुछ कराना चाहते हैं, विवश होकर, कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है कि उनको वैसे ही नृत्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो सारा संसार भगवान के अधीन है, भगवान इस सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि को उन्होंने बनाया है, इसका पालन पोषण करते हैं, पूर्णतः उनके नियंत्रण में है, हम लोग स्वतंत्र हैं। तो इस बात को रिपीटेडली, यही बात यद भयात वाति वातोयम, जिसके भगवान के भय से वायु चल रही है, वायु ऐसे संस्कृत के अनुसार वायु चल रहा है, वायु देवता है, लेकिन हम लोग हिंदी के पता नहीं कैसे हवा के लिए स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, हवा चलती है, वास्तव में सही स्थान नहीं, वायु देवता है ना, अग्नि देवता, अग्नि जलती है, अभी अच्छा नहीं है ग्रामर के अनुसार, यह अच्छा अच्छी हिंदी है लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं है। आप कहते हैं अग्नि जलती है, अग्नि जलता, अग्नि देवता है ना, अग्नि देवी नहीं है। तो ऐसे वायु चलता है, पवन प्रवाहित होता है मेरे भय से, मेरे निर्देशन से, सूर्य प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं, दुनिया को प्रकाश देते हैं, समय पर उदित होते हैं, समय पर अस्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से, मेरे नियंत्रण, भय का अर्थ लिटरेरुस में नहीं, उनको भय लगा हुआ है, उनकी आज्ञा के अनुसार इंद्र बारिश करते हैं, जहां जितनी आवश्यकता होती है वहां पर इंद्र दे रहे हैं भगवान के अनुसार, और सारे नक्षत्रगण जो रात्रि के समय चमकते हैं, भले कभी बादल से उजल हो जाते हैं लेकिन अपने से नहीं कुछ छोड़े एक दिन नहीं जाएंगे। आप लोग होते हैं ना, कोई काम सेवा दिया गया किसी दूसरे पर डाल देते हैं, अरे पुजारी आज तबीयत खराब, किसी को बता तुम भी पूजा कर देना हमारे लिए, लेकिन ये लोग एकदम नहीं, आना है तो आना। तो भगवान भगवत गीता में इस बात को श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कोट, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, प्रकृति मेरे निर्देशन में काम कर रही है। कुछ लोगों की मान्यता है जिसको निरीश्वरवादी अथवा अनिश्वरवादी कहते हैं, जो भगवान की सत्ता को भगवान की एग्जिस्टेंस से विश्वास नहीं करते हैं, उनकी यह मान्यता है कि ये क्या होता है कि प्रकृति अपने से ऑटोमेटिक काम करती है, इसमें पीछे से किसी का हाथ नहीं है, प्रकृति स्वतंत्र है और जैसा उत्पन्न करती है। लेकिन प्रकृति और प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप पूर्णतः भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहां इतना ही नहीं, भगवान कपिल देव यह भी कहते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, नीम में विशिष्ट प्रकार का गुण है, तितापन है, अथवा विशिष्ट प्रकार के चीकू में मिठास है, अथवा नींबू में खटापन है, और उसको उनको गुण को धारण करता है, नीम की स्वतंत्रता नहीं है कि नीम चाहे तो चलो अब बहुत दिन तक तीता हम मीठा हो जाऊं। आगे के श्लोक पढ़ते हैं कि जितने वनस्पति हैं उनको समय से उगना है, कोई चीज ऐसे वनस्पतियां हैं उसी समय से उसमें उगेंगे, और उसमें जो गुण भगवान ने दिया है कहा है उसी को धारण करना है। औषधियों के गुण जानते हैं ना, करेला होता है कैसा लगता है, तो चलो भाई करेला के मन में आगे बहुत दिन तक तीता में रहा, अब कल से मीठा में हो जाऊं, एकदम उसको जो भगवान ने वैसे कहा। एक भगवान यह बातें कहें, वनस्पतय भीता लता औषधि सह स्वे स्वे काले अभिगृहंती पुष्णाती च फलानी च, फल भी आते हैं तो उनको फल देना है, ऐसा नहीं कि किसी भी फल को, सेव को सितंबर अक्टूबर में फल आना ही है, फल तो पहले लग जाता है लेकिन उसमें पकना ही है, ऐसा नहीं कि होल्ड करके नहीं रख सकते। नदियां में जो जल प्रवाहित होता है, ऐसा नहीं कि जमुना जी की इच्छा तो उधर से रुक जाऊं, पानी को लादन बहना ही बहना है, कि एक क्षण के लिए भी नदी को रुकना नहीं है। स्रवंति सरित भीता, और पृथ्वी आप जानते हैं, पृथ्वी का देखें चारों तरफ पृथ्वी के जल है, जल के बीच में पृथ्वी स्थल जो भाग है, बड़े बड़े पर्वत हैं चाहे भूभाग है वह जल के, तो यह भगवान के भय से पृथ्वी डूब नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी को मन का जैसे बच्चे डुबकी लगाते हैं थोड़ा सा स्नान में कर लूं, यह उनको नहीं करना है, अब उस पर तैरते रहना है, पृथ्वी को जल के ऊपर तैरते रहना है, और समुद्र को भगवान ने कहा कि समुद्र को अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी उसमें पानी हो, ऐसा नहीं कि किसी दिन शिक्षा हो तो ऊपर चलाऊं मैं, ऐसा नहीं ना, समुद्र के तट पर बड़े बड़े नगर हैं और समुद्र के मन में किसी दिन आ जाए, आप देखे हैं ना कि अरे भाई चलो बॉम्बे समुद्र के तट पर है, समुद्र के मन में आया कि भगवान की लीला कुछ नासिक में हुई थी, चलो एक बार नासिक को देख लूं मैं, और ऊपर तल ऊपर कट के वहां देखने के लिए आ जाए, नहीं आ सकता, समुद्र को अपनी सीमा में रहना है और भगवान का आदेश है, उसका अतिक्रमण कर नहीं सकता है। पृथ्वी सारे भार को लेकर, बड़े बड़े पर्वत हैं उस पर्वत के भार को लेकर तैरते रहना है, डूबना नहीं है, यह भगवान है सर, वो सब कोई भी स्वतंत्र नहीं। और भी बहुत सी बातें हैं, यही बातें कही गई इस अध्याय इसमें हम लोग 40 पढ़ रहे हैं, और इसमें और भी कुछ श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या 45 है, इसमें यही बात कही गई है कि सारा जगत, सारी विश्व, सारे विश्व और सारे विश्व के प्राणी चाहे वो औषधियों के रूप में है, पेड़ पौधे के रूप में, मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में, उनको अधीन रहना है और कि मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तो कुल मिलकर रही बात बताई गई है इसमें कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े देवता लोग भी। भगवान यह बात इसलिए बता रहे हैं कि एक बार वो इसके प्रारंभ में भगवान कहे हैं कि मेरे अतिरिक्त यदि कोई मेरी शरण नहीं लेता है, वो भगवान ने कहा है कि संपूर्ण भाव से मेरे शरण में होना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो किसी के मन में आ सकते हैं कि ठीक है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, अच्छी बात है, तो हमको देवता लोग कुछ कष्ट दे देंगे, उनकी पूजा नहीं होगी तो, समय पर पूजा नहीं होगी तो वो लोग हमको कष्ट दे देंगे, बड़े वो लोगों का भी स्वतंत्र है कि ना। मेरी कोई भक्ति करता है तो कोई भी देवता उसको बाधा नहीं दे सकता है, विपरीत नहीं जा सकता, निरंतर उसे अनुकूल होकर सेवा में लगे रहना। तो मुख्य रूप से इस श्लोक में, बहुत सरल श्लोक है, व्याकरण के दृष्टिकोण से भी, छंद के दृष्टिकोण से भी भगवान यही कहते हैं कि मेरे भय से वायु प्रवाहित होती है, वायु देवता प्रवाहित होते हैं, मेरे भय से सूर्य प्रकाश और ताप देते हैं, मेरे भय से इंद्र समय पर, उचित समय पर, उचित स्थान पर वर्षा करते हैं, और मेरे भय से जो नक्षत्र हैं, तारे गण हैं, वे प्रकाश देते हैं, मेरा उन पर नियंत्रण है, वो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो हम पूर्णतः हम लोग भगवान के अधीन है। काठे रपुतली जेने कुह करना चाहे, चैतन्यमृत में कहा गया है काठ की पुतली को कुह, कुहक मतलब सूत्रधार, जैसे ना चाहता है वैसे पूर्ण संपूर्ण जगत को भगवान ने निर्माण किया है, इसका पालन पोषण करते हैं, पूरा पूरा 100% उनका नियंत्रण है, हम पूर्णतः उन पर आश्रित हैं। किसी भी क्रिया के लिए, हमारे मन में जो भावनाएं उठते, विचार उठते हैं, उस पर भी संपूर्ण रूप से भगवान का नियंत्रण है। श्लोक तो आसान है ना, थोड़ा भी जो संस्कृत जानते हैं, यह मद भयात, मेरे भय से वातः मतलब कि हवा, अयम यह हवा, वाती माने बहती, बहता है, मेरे भय से हवा प्रवाहित होता है, मेरे भय से सूर्य ताप देते हैं, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं, और मेरे भय से नक्षत्रगण, तारे, चंद्रमा जितने आकाश में देखते हैं वो प्रकाश देते हैं। श्लोक तो स्पष्ट है ना, कोई प्रश्न है तो पूछिए, समय तो बहुत है। हाँ प्रभु जी, आप पूछ रहे हैं कि यदि हम लोग पूर्णतः भगवान के अधीन हैं तो भले बुरे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, उत्तरदायी नहीं है, ऐसे कठपुतली एक दूसरे को मार देती है और दूसरे, तो उस पर तो नैतिकता का दोषारोपण नहीं कर किया जाता है, क्योंकि वह जो कुछ प्रक्रिया हो रही है वो तो सूत्रधार करा रहा है। तो फिर सुख दुख के लिए, भले बुरे के लिए हम लोग उत्तरदायी नहीं होना चाहिए, प्रश्न तो समझ में आ गया ना। जब भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं तो फिर कोई भला है अथवा कोई बुरा है, कोई भक्त है अथवा कोई अभक्त है, तो वह तो जिम्मेदार नहीं है ना। प्रश्न सही आ रहा है ना कि भाई, तब कहें किसी को कहते हैं कि वह खराब है, वो अच्छा, जितने नैतिकता है, मोरालिटी है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो यह प्रश्न समुचित एकदम समीचीन है, और मेरे मन में भी यह बात, यह प्रश्न एकदम से हाउंटिंग कहते हैं ना, एकदम से सरचार जैसा आ रहा है हम इसको कह ही रहे एकदम सब, जैसा जैसा हम कोट कर दिए भागवतम से कोट कर दिए कहाँ कहाँ, तो हम नैतिकता समझते हैं, मोरालिटी से कहा जाता है उसके लिए। हम तो क्यों जिम्मेवार होंगे, हम खुद दोषारोपण किया जाए तो भगवान ही हमको कुछ करा दे, हमारा हमसे ही कुछ प्रेरणा देकर भावना को कंट्रोल करके कुछ चोरी करा दे, तो हम पर उसका दोष नहीं आना चाहिए, हमको क्यों पनिशमेंट देना। रियली यह प्रश्न हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम सामंजस्य नहीं कर पा रहे हैं कि यह हम क्यों। एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले हम उस समय बंबई मंदिर में रहते थे, जुहू मंदिर में रहते थे, और एक भक्त हैं अभी भी हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हम लोगों के संस्था के, रसराज नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट है। तो इसी पर विचार दे रहे थे तो हम उनको कोई विचारों का, हम नहीं कहते हैं कि उसे आपका समाधान हो जाएगा, चाहे मेरा भी समाधान हो गया है कम से कम, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि भगवान कुछ पुनः हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता हमारी होती है, हमारी भी थोड़ी स्वतंत्रता होती है, और हमारी इच्छा के अनुसार ही भगवान कुछ हमसे करा देते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार भगवान फॉलो कर देते हैं और आप कुछ कर लेते हैं तो उसके फल के आप उत्तरदायी हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया था, वह आप गए यहां पर बाहर गए कृष्णवर्णम मंदिर के, एक टैक्सी वाले को हायर कर लिया, कहे कि चलो हमको राधा कुंड जाना है, उसके साथ चलोगे। आप जब जा रहे थे तो छठीगढ़ जाकर उसे मोड़ लिया और उसमें पेट्रोल उसने भर दिया और पैसा भी उसने दे दिया, आपसे नहीं मांगा, आपको केवल हम बैठ गए, आपने कहा कि राधा कुंड जाना है, वह इधर से छठीगढ़ छठीगढ़ से राइट लेकर एक पेट्रोल पंप, पेट्रोल भर पैसा भी दे दिया, फिर लगा करो चला गया। वो ड्राइव करता था, वो सब कुछ करता था और लौट के शाम को आ गया और आपसे पैसा मांग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अरे मैंने तो, तुम ड्राइव किया, तुम पेट्रोल भरा, तुमने पैसा, मैं क्यों तुमको पैसा दूं? तो आप क्या कहें? आप कह सकते हैं ना मैंने क्या किया है, वह राधा कुंड ले गया और पेट्रोल डाला, वो आपकी इच्छा से डाला है आपकी, इसीलिए पेमेंट आपको करना है, आप नहीं कर, मैंने क्या किया? मैंने तो तुम कहा था चलो, तुम खुद ड्राइविंग कर रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था, स्टीयरिंग घुमा रहा था, वो क्या कहते हैं गियर चेंज कर रहा था, तुमने चलाया, तुमने पेट्रोल, मैं क्यों? वो जो कुछ कर रहा था वह आपकी इच्छा से कर रहा था, आप इच्छा किए थे और उसने कार्य किया, इसीलिए चूंकि आपकी इच्छा है इसीलिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा। भगवान कुछ आपको सहयोग दे देते हैं कार्य करने के लिए, आपने मन में चोरी करने की इच्छा हुई, भगवान आपको सामर्थ्य देते हैं, इंटेलिजेंट भी देते हैं कि रात्रि में जाने से कोई नहीं दिखता है, सब इंटेलिजेंट देते थे, ऐसे दिन में आप नहीं जाते हैं तो दिन में कोई देख लेगा, रात में तो आपको इंटेलिजेंट भगवान दे देते हैं कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में कोई नहीं देखेगा, उनके सारा व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान सारी व्यवस्था किए आपकी इच्छा के अनुसार, इसीलिए कर्मों के उत्तरदायी आप हैं। भगवान कहे ना ना मैं कुछ नहीं लेने वाला, टैक्सी का पेमेंट उसको नहीं करना है, क्या ड्राइवर कर रहा है चाहे उसके मालिक से तो करा दीजिए, वो नहीं, आपको क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार वह राधा कुंड पर आपको ले गया था और लाया। तो हम लोग भगवान की, कहा जाता है कि एक भगवान की इच्छा के और शक्ति के पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो तो हिलता है ना, वो भगवान जब नहीं चाहते उनकी इच्छा बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता है, कितना भी तूफान आंधी आए। तो हम लोग जिम्मेवार हैं अपने कर्मों के, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने सुख और दुख कर्मों के जाए, क्योंकि वो सारी क्रियाएं हुई है भगवान ने कराया है, लेकिन आपकी इच्छा के हमारी इच्छा कम से, और भगवान एक का एक गुण है और सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और हम सब तंत्र संपूर्णतः इंडिपेंडेंट हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, और चूंकि हम लोग उनके अंश हैं तो हमें भी भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता दे रखी है, उसी के हम लोग हैं। समुद्र में का जल क्या कर बड़ा भाष जल हो खारा है, उसका एक बूंद भी खारा होता है, तो भगवान है ये सर्व स्वतंत्र हैं, तो हम लोगों में थोड़ी स्वतंत्रता माइन्यूट इंडिपेंडेंट में दे रखा है। और भगवान का स्वाभाविक उस स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छीनते हैं। आपको दे दिया है तो दे दिया है, ऐसा नहीं कि आप मिस यूज करने लगे तो भगवान कहना ना 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 तो तुमसे हम ले लेता हूं, दे दिए हैं दे दिए हैं। और उसी का हम लोग मिस यूज करते हैं अथवा यूज करते हैं, उसी के अनुसार हमको फल भोगना पड़ता है। तो भागवत में तो कहा गया है कि ईश्वर से ही बसे लोको योषा दारू मई यथा। फिर भी हम आपके ही प्रश्न को और भी क्लियर करते हैं कि वहां पर जो यह उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में कि दारू तो इच्छा नहीं करती है कठपुतली, वो थोड़ी इच्छा करती है, जो भी इच्छा भी है युद्ध दिखाना है तो सूत्रधार कराता है ना, वो थोड़ी कठपुतली कोई इच्छा करती है कि तो इच्छा हाथ उठाने की करती है तो इसलिए उठाया जाता है। तो इसीलिए यह प्रश्न हमें भी बहुत बार हॉन्टिंग करता है और पजल कर रहा है कि यदि एकदम हमारे यहां तक इच्छा भी वह भी कंट्रोल्ड है भगवान द्वारा, हमें जो इच्छा होगी वह भी स्वतंत्रता नहीं है। भागवत में दो तीन बार हम इसको देख रहे थे कहां कहां किया गया है, तो हम तो दो ही एक नारद जी का वृत्रासुर की बात लेकर है, दोनों ने यह कहा है ईश्वर से ही बसे लोगों योषा दारू मैय था। नारद जी कहते हैं कि जैसे कठपुतली सूत्रधार के अधीन है वैसे ही सारा जगत भगवान के अधीन है, और ठीक उसी बात को वृत्रासुर भी कहते हैं यथा दारू मई नारी। फिर भी यह बात तो सत्य है, भगवान भगवद गीता इत्यादि में बात तो कहते ही हैं कि हम अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं और भगवान ने हमें जो थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखी है उसका कभी हनन नहीं करते हैं, उस स्वतंत्रता के ही सदुपयोग अथवा दुरुपयोग के कारण हमको सुख अथवा दुख, मान अथवा अपमान, नरक अथवा स्वर्ग मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, और पूछना था तो इस प्रश्न को संजोग रखिएगा, हम समझिए कि प्रश्न हजारों वर्ष पहले किया गया है, अभी लोग कह रहे हैं हजारों वर्ष बाद भी किया भी जाएगा, लेकिन इस बात को देख लिया एकदम स्पष्ट है कि है ना कि यद भयात भगवान के भय से सब कुछ होता है, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इसमें मोटा मोटी है कि काल का स्वरूप के विषय में भगवान कपिल देव कहते हैं कि भगवान का ही एक विशिष्ट विग्रह रूप है काल, टाइम फैक्टर यह इसका रूप है और इसका प्रभाव है कि यह प्रत्येक चीज में परिवर्तन कर देता है, कोई ऐसा चीज जो भी परिवर्तन काल का काम परिवर्तित हो जाए, हमारा शरीर परिवर्तित हो जाता है, कोई भी वस्तु जिस रूप में उसने नहीं रहता है, हर एक चीज में निरंतर अक्षुण परिवर्तन होता रहता है, वह उसका प्रभाव है और स्वरूप इसका है कि वह भगवान का ही एक विशिष्ट रूप है। ना ये गलत नहीं है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यह अब इसको कुछ शास्त्रीय वाक्य हैं सिद्ध, अब उसके विपरीत हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, यदि कोई देगा तो वो गलत ही हो जाएगा। हाँ कर्मों के अनुसार हमारा पूर्व कृत कुछ कर्म है तो उस कर्म के अनुसार भगवान हमको फल देते हैं उनकी इच्छा की। ये एक बात भाई है, बात आप लोग जानते होंगे इस कर्म के विषय में, जहां तक तो हमें करना चाहिए कि जब कंस देवकी का बाल पकड़ लिया जिस दिन भी मथुरा के गली में मारने जा रहा, आकाशवाणी सुना कि मूर्ख तुम जिस स्त्री का इतना भारी सम्मान कर रहे हो, प्रतिष्ठा दे रहे हो, तुम नहीं मूर्ख व्यक्ति हो, इसका आठवां पुत्र तुमको मार देगा। आकाशवाणी देवता लोग आकाश से बोला, आकाशवाणी हम लोग इसको कहते हैं, नहीं देखते हैं, ऊपर से आता है, और देवता लोग बोले थे तो तुरंत ही कंस देवकी का बाल एक हाथ से बाएं हाथ से बाल पकड़िया, दाहिने हाथ से तलवार काटने जा रहा था काट। वसुदेव जी वहां यह बात कहे हैं कि अब क्या करें, तो उन्होंने वसुदेव जी ने कहा कि जहां तक हमारा किसी व्यक्ति का बल बुद्धि काम करता है मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। इसी लोग समझाने लगे, बहुत सा तर्क दिए, बहुत लॉजिक दिए, ज्ञान के उपदेश किए, कंस नहीं माना, यहां तक कि अपने हृदय को यह कह कर कि मैं इसके सभी पुत्रों को दे दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं आपके आठवें लड़के से भय है, मैं इसको आपको सौंप दूंगा, इसे छोड़ दीजिए। तो वहां प्रयास कर ले कि जितना हमारा सामर्थ्य चल सकता है, यद्यपि कि सभी भगवान की इच्छा से होगा ही, जो होने वाला होगा होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कर्तव्य होता है कि हमारी बुद्धि हमारा बल जितना काम करता है उसे उचित काम को करने का प्रयास करना चाहिए और गलत से बचने का। एक नीति के श्लोकों में इसे श्रीधर स्वामी ने वहीं पर कोट किया है, एक श्लोक कोट किया है। श्रीधर स्वामी जब भागवतम के टीका करते हैं कर्म की बात है, तो अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो यदा भवेत तरही दुखे न युंजेरन नलो राम युधिष्ठिरा। इसका अर्थ है कि अवश्यम भावी भाव, जो होने वाला होता है उसका कोई उपाय बना नहीं है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो यदा भवेत, जो निश्चित रूप से दैव का विधान है, भगवान की इच्छा वो होने ही वाला है, उसको टालने का यदि कोई उपाय होता दुनिया में तो राम महाराज नल और युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति विपत्ति में नहीं पड़ते। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो यदा भवेत तरा दुखे न युंजे न, दुख भगवान राम एकदम मौल, ऐसे तो भगवान थे लेकिन एक भौतिक दृष्टिकोण से विचार किए, एक मनुष्य के रूप में व्यक्त सुशील, सबसे सुशील सदाचार संपन्न व्यक्ति, उस व्यक्ति को 14 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा नंगे पांव, 14 वर्ष तक राजकुमार को जंगल में जाना पड़ा, जंगल में विविध प्रकार की विपत्तियां, स्वयं स्त्री का अपहरण हुआ, वो कौन सा दुष्कर्म किए थे राम इस विपत्ति में पड़े। और वैसे नल महाराज नल दमयंती की कथा सुने, बड़ी भारी विपत्ति में पवित्र कृति राजा थे। श्रीमद् भागवतम यह कहा गया है कि दो पवित्र राजाओं का नाम लिया है तो पुण्य श्लोक नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, सबसे बढ़िया राजा पुण्य श्लोक राजा दो का नाम लिया गया है तो नल और युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर महाराज अब इससे सुशील, इससे सदाचार संपन्न, इससे बढ़िया कौन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उनको पर कितनी भारी विपत्ति आई। तो यहां कहते यदि अवश्य जो होने वाला है उसका कोई उपकार उपचार होता तो किया जाता, वो है ही नहीं। यदि होता तो नल जैसे राजा को दुख विपत्ति में नहीं पड़ना पड़ता, राम जैसे महान व्यक्ति को जंगलों में विपत्ति का दिन नहीं देखना पड़ता, और युधिष्ठिर महाराज तो जो होना वाला है वो होगा ही। श्रीधर स्वामी वही कोट किए हैं इस श्लोक को, यह बात उनके में आई एक बार वसुदेव जी के मन में कि जो होना होगा, अरे देवकी को मरना होगा मरेगी, छोड़ना होगा छोड़, हमें क्या करें, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाई, नहीं जो होना वाला होगा वो दूसरी बात, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें पूरी ताकत लगाकर देवकी के प्राण की रक्षा करना है। तो हम कुछ नैतिक बात आ गई है उनके साथ, बिकॉज मैं क्या करूं, अब भगवान की इच्छा है तो जो ठीक है होगा, क्या करें, वसुदेव जी छोड़े, अरे इसको मरना होगा मरेगी, नहीं जीना होगा ऐसी, हम क्या कर, यह उन्होंने नहीं किया है। अपना जो कर्तव्य है अपनी पूरी सामर्थ्य बल और बुद्धि। आप वसुदेव जी कहे हैं कि मृत्यु को टालने के लिए जितना हमारे पास बल है, हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी औषधि है, पर जो करना चाहिए उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं, ऐसा नहीं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, पत्ता भीड़ रहा है तो हमारा क्या करते हो। भगवान की इच्छा होगी तो हमको मंगला आरती में ले जाकर खड़ा कर देंगे, नहीं इच्छा होगी तो अब उनका है जीव, हम क्या ट्रबुल में सोचते रहते कौन सा बहु उछी लिए तो कैसे उठाकर ले जाकर वहां खड़ा कर देंगे। किसी को शायद करते होंगे, हम लोगों को तो खड़ा करने वाले नहीं। आपको प्रयास, आपको जगना होगा, अलार्म भी लगाना होगा, स्नान भी करना होगा, जल्दी जल्दी तिलक भी करना हो जाना, तब आप पहुंच पाएंगे। नहीं भगवान चाहते होंगे तो प्रयास भाग में कंजूसी नहीं, प्रयास करना है। एनी हाउ फिर भी मैं एकदम ऑनेस्टली ऑन माई कमांड, जैसे सच में मुझे एकदम सच्चे हृदय से ऑनेस्टली और सिंसियरिटी से पूछा जाए तो हम आपके प्रश्न के साथ सहमत हैं कि यदि यह सारी दुनिया एकदम पूर्णतः भगवान के स्वतंत्रता है तो हम अपने नैतिक कर्तव्यों के लिए क्यों उत्तरदायी हैं। भगवान ही उत्तरदायी हैं। जो उदाहरण दिया गया है, योषा दारुमयी यथा अथवा यथा दारुमयी नारी कठपुतली सूत्रधार के अधीन है, तो सारा संसार जब उतना अधीन है तो फिर हम पर कौन सा, हम क्यों सुख दुख के दोषी हों, भागी हों। भगवान भगवत गीता में कहे हैं कि अपने के लिए तो कहे कि ना मैं नहीं, जीव है, जीव सुख दुख का भोग, भगवान वहां पर रहते हैं परमात्मा रूप से, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जीव वो सुख दुख की अनुभूति करता है। यदि उस अज्ञान के कारण शरीर में अभिमति हो जाती है, शरीर से क्या कहते हैं देहात्म धारणा हो जाती है, तो उस देहात्म धारणा के कारण जीव ही सुख दुख का अनुभव करता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव जीव करता है। भगवान ने, भगवान स्पष्ट माना, भगवद गीता में कहेंगे ना 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 एक नारद जी अपना बचपन का इतिहास बताते हैं तो वहां कहे हैं एक बार यह बात जो कहते हैं वृत्रासुर छठवें स्कंध में, और एक बार रुक्मिणी जी से बातचीत करते हुए, रुक्मिणी के विवाह के समय किसने कहा है लेकिन एकदम एग्जिट आप जो प्रभुपाद जी का फूल है उसमें देख लीजिएगा, और उसमें दारुमयी अथवा कुहक कड़कड़ कहां कहां वहां आता है, और सभी जगह एकदम इसी रूप में अनुवाद किया गया है। उसमें रुक्मिणी जी वाला जो अनुवाद है वो प्रभुपाद जी का नहीं है, वो तो दूसरे आचार्य लोग किए हैं, विशेष करके गोपी प्राणधन प्रभु ट्रांसलेशन में थे, चाहे हृदयानंद गोस्वामी गोसाई महाराज और लोग इस विषय में, तो कई एक जगह ऐसे बात देखते हैं कि यह सारा संसार, विशेषकर नारद जी वाला देख लीजिएगा, इससे ही बसे लोको योषा दारू मैय था। तो ठीक है यहाँ समाप्त करते हैं। यह जहाँ वो बात आई है वसुदेव जी विवाह के रथ में जा रहा, आकाशवाणी हुई है, और उस वहां पर श्रीधर स्वामी अवश्यम भाई भावानाम प्रतिकारो यदा भवेत तरही दुखे न जूंजेरन नलो राम युधिष्ठिरा, जो होने वाला है उसका कोई उपाय होता तो युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति, नल जैसा व्यक्ति और राम विपत्ति में नहीं पड़ते, इसका मतलब उसका कोई है ही नहीं, उपाय नहीं है, होना है तो होना। देखिए कितना प्रयास किया गया था, आप जानते हैं
वशिष्ठ जी जैसा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता सिद्ध महात्मा कहा था कि टुमोरो इज द बेस्ट प्लेस, राज्याभिषेक के लिए कल सबसे बढ़िया अवसर है, सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया दिन हो ही नहीं सकता, कल राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। बड़े बड़े ज्योतिषज्ञ लोग मिलकर अपने सारे गर्भ कौन संहिता है अभी भृगु संहिता और सब बड़े कल तक हुआ क्या, अरे वही सब इतना खराब दिन निकला कि उसी दिन राम को जंगल में जाना पड़ा, पिताजी की उसी तरह मृत्यु ने एक दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तीन तीन स्त्रियां विधवा हो गई। क्या ज्योतिष कहाँ काम काम कर लगाए तो थे कि अपने सबसे बढ़िया इस दिन होगा, बस सब कुछ ऑस्पिशियस होगा, सब कुछ इनऑस्पिशियस हुआ, अपनी ताकत लगाए थे ना, अब इससे बड़ा ज्योतिषज्ञ क्या हो सकता है। आप कहीं यात्रा में जाते हैं तो पता देखिए तो अमृत योग है कि नहीं, मृत्यु काल तो नहीं है, आप देखकर थोड़ा सा एक एक दो मिनट का इधर उधर कर लेते हैं, 10 बजे नहीं निकलना है, 11 बजे निकलना है, चाहे 9 बजे निकल जाना चाहिए, नहीं तो इनस्पीसीएस होगा। ये लोग बड़े बड़े वशिष्ठ जैसा ज्योतिषज्ञ लोग बैठ कर निर्धारित करते टुमोरो इज द बेस्ट टाइम फॉर कोरोनेशन, राज्याभिषेक के लिए। सारी ज्योतिष की मान्यताएं, सारी सिद्धि विफल गई, विपरीत चला गया, भारी विपत्ति, दो दो लड़के जंगल में चले गए, सीता जी जंगल में चली गई, 12 बजे भटकना पड़ा 14 वर्ष तक, और दूसरा यह कारण कि दशरथ जी की मृत्यु हुई, सभी रानियां विधवा हो गई, पूरा तहस नहस हो गया, डिजास्टर ही हो गया। यदि ये खुरफाते लोग नहीं किए होते, छोड़ा 10 दिन बाद ही होता अभिषेक, भरत को बुला ले शायद, लेकिन ये लोग ना सबसे बढ़िया काल है आज ही है, तो काल देख लेना चाहिए, ऐसे देख लीजिएगा। श्रीधर स्वामी ने उसे कोट किया है, अवश्यम भाई भावानाम प्रतिकारो यदा भवे तदा दुखेर न जुंजेदन नलो राम युधिष्ठिरा, जो होने वाला है होता है, उसका कोई उपाय नहीं बना है, कुछ वो होने वाला होगा ही, फिर भी यह सोच कर भी वो वसुदेव जी कहते हैं कि नहीं जो कुछ हो लेकिन अब ताकत तो लगाना है, देवकी को बचाना है, और वो बचा भी लिए। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की।